न्यूज 18 के खबरों से भरे इस पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यूज पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भारत में चल रही आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तानी भूमिका की। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरों पर भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर बनी गहमागहमी भी आपके सामने होगी। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना और वायु प्रदूषण की खबरें भी आपके लिए लेकर आया हूं। तो फिर चलें हम आज के इस न्यूज पॉडकास्ट पर। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2019 में हुए आतंकी हमले में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की संसद में कहा, पुलवामा में हमारी कामयाबी इमरान खान की हुकूमत में लोगों की कामयाबी है, हम और आप इस कामयाबी के हिस्सेदार हैं। इस बयान के बाद फवाद चौधरी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जो मैंने बयान दिया था वह पुलवामा हमले के बाद के एक्शन के संदर्भ में कहा था, लेकिन हम भारत को युद्ध के लिए उकसा नहीं रहे हैं। वह लंबी स्पीच थी और मैंने नहीं कहा था कि पुलवामा हमला पाकिस्तान ने किया था। फवाद चौधरी ने यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के नेता सरदार अयाज सादिक ने कहा था कि विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़े जाने के बाद जब फरवरी 2019 में पाकिस्तानी संसदीय समिति की बैठक हुई तो उसमें प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं आए थे और वहाँ सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के पाँव काँप रहे थे और पसीने छूट रहे थे। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने कहा है कि एक बैठक में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि यदि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को नहीं छोड़ा जाता है तो भारत 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर देगा। विपक्षी नेता के मुताबिक जब कुरैशी यह कह रहे थे तब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के पसीने छूट रहे थे और उनके पांव कांप रहे थे। सादिक के अनुसार कुरैशी ने कहा था, अल्लाह के वास्ते हमें उसे छोड़ देना चाहिए। भारत ने गुरुवार को कहा है कि आतंकवाद का समर्थन करने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में पूरा विश्व जानता है और वह चाहे जितना भी इनकार कर ले, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में पाकिस्तान के बारे में और सीमा पार से आतंकवाद का जिक्र किए जाने पर इस्लामाबाद की आपत्ति पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने यह कहा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि जो देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए लोगों को अधिकतम संख्या में पनाह देता है उसे खुद को पीड़ित बताने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव समेत 3 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी है। गुरुवार शाम हुई इस वारदात की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के समर्थक आतंकी समूह द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। PM मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, अपने 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की मैं निंदा करता हूँ। जम्मू कश्मीर में अच्छा काम कर रहे थे। दुख की इस घड़ी में मेरे विचार उनके साथ हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। ये खबरें आप न्यूज 18 के पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं। इन खबरों को आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर विस्तार से पढ़ सकते हैं। दिल्ली NCR और उसके पड़ोसी राज्यों में प्रदूषण फैलाने वाले सावधान हो जाएं। अगर अब प्रदूषण फैलाया तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, साथ ही 5 साल की सजा भी हो सकती है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए केंद्र ने एक आयोग बनाया है, इसमें इसरो के प्रतिनिधि भी होंगे। यह आयोग EPCA की जगह लेगा। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और इसके आदेश को सिर्फ NGT में ही चुनौती दी जा सकेगी। इस बीच गुरुवार सुबह देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता यानी AQI बहुत ही गंभीर स्तर तक पहुंच गई है। लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि बुधवार को दिल्ली में पहली बार 5,000 पॉजिटिव केस का आंकड़ा पार हुआ है। इसे देखते हुए हमने कोरोना से लड़ाई का तरीका बदला है। अब हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और तेज कर दी है, जांच की संख्या भी बढ़ा दी गई है। नए प्लान के तहत जो भी पॉजिटिव केस आता है तो उसके नज़दीक के संपर्क वाले सभी लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, चाहे उन लोगों में कोरोना के लक्षण हों या न हों। कभी कभी दो दो बार टेस्ट किए जा रहे हैं। तीसरे पीक के लिए अभी एक हफ्ते हमें देखना होगा, या फिर हो सकता है यह तीसरा पीक भी हो। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कोरोना संक्रमण के आंकड़े पेश करते हुए कहा,
ये वो पांच राज्य हैं जहां पिछले 24 घंटे में देश में कुल हुई मृत्यु के 58% मृत्यु हुए। महाराष्ट्र में 84, वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पर 59, दिल्ली तीसरे नंबर पर 54, छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पर 43 और कर्नाटक पांचवें नंबर पर 42। हमने ये पाया है कि फेस्टिवल के दौरान, जो अभी हमने आपको स्लाइड दिखाई, केसेस बढ़े हैं, केरल में बढ़े हैं, वेस्ट बंगाल में बढ़े हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में बढ़े हैं।
बिहार लोक सेवा आयोग ने 65वीं मुख्य परीक्षा के लिए टाइम टेबल रिवाइज कर दिया है। बीपीएससी ने कहा है कि तारीखें वही रहेंगी, सिर्फ टाइमिंग बदल गई है। आपको याद दिला दें कि बीपीएससी 65वीं मुख्य परीक्षा 25, 26 और 28 नवंबर को आयोजित होनी है। 25 तारीख को परीक्षा दो शिफ्ट में होगी, जबकि बाकी दिनों में सिर्फ एक शिफ्ट में। परीक्षा की पूरी टाइम टेबल जानने के लिए हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, दूसरे और तीसरे चरण के मतदान अभी होने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के राजनीतिक इतिहास में शायद यह पहला मौका है जब सीएम कैंडिडेट के लिए 5-5 उम्मीदवार मैदान में हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री और एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव, आरएलएसपी, बीएसपी, एआईएमआईएम गठबंधन के उपेंद्र कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव के साथ साथ द प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी पर भी सबकी निगाहें हैं। इन नामों में देखें तो पुष्पम चौधरी प्रिया नई उम्मीदवार हैं। अब देखना होगा कि लंदन से बिहार बदलने के लिए आई पुष्पम चौधरी अपने इरादे में कितना कामयाब होती हैं। बिहार विधानसभा से जुड़ी और खबरें आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आपको मिलेगा भोजपुरी जंक्शन, वहाँ आप पढ़ सकेंगे अपनी भाषा में विशेष विमर्श। आज विचार किया गया है का नीतीश के विकल्प बनल चाहत बाढ़ चिराग। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें इंदौर का सांवेर विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। इस सीट पर कांग्रेस ने प्रेमचंद गुड्डू और भाजपा ने तुलसीराम सिलावट को मैदान में उतारा है। यही वजह है कि यह सीट उपचुनाव में हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने खास माने जाने वाले सिलावट के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वह 13 दिन में तीसरी बार सांवरे की जनता से भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की और खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दें विदा। नमस्कार।